भूमिका मीमांसा दर्शन का उद्भव एवं विकास। मीमांसा शब्द का अर्थ विचार होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय वाङ्मय में सर्वप्रथम सिद्धांत रूप में तर्क का उपयोग योग संपादन विधि के विषय में किया गया। वैदिक साहित्य में यहाँ तक कि मंत्र भाग में मीमांसते शब्द का प्रयोग मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों के विभिन्न स्थलों में याज्ञ क्रिया विषयक विचार विमर्श के अर्थ में मीमांसा शब्द का प्रयोग मिलता है। इस अर्थ में मीमांसा शब्द का प्रयोग कौशितकी जैसे परवर्ती ब्राह्मण ग्रंथों में अधिक मिलता है। मीमांसा का उद्भव ब्राह्मण ग्रंथ मंत्रों की याज्ञपरक व्याख्या है। याज्ञ विधान का उदय कब और कैसे हुआ, ब्राह्मण ग्रंथों में उनका अवतार कहाँ से हुआ, यह कहना कठिन है। यद्यपि ब्राह्मण ग्रंथों में याज्ञ संपादन विधियों का ही सविस्तार विवेचन प्राप्त होता है, किंतु वह भी स्वयं में पूर्ण नहीं है। अवश्य ही कोई मौखिक परंपरा रही होगी, जिसके आधार पर परंपरा से विभिन्न शाखाओं में निहित याज्ञ प्रक्रिया के विवेचन को समझा और समझाया जाता होगा। शनह शनह याज्ञ विज्ञान में समृद्धि होती गई होगी। तद्विषयक अनेक समस्याएं उठ खड़ी होंगी, जिनका समाधान होता रहा होगा, और मौखिक परंपरा द्वारा प्रभूत याज्ञ विज्ञान अनेक पीढ़ियों से संक्रांत हुआ होगा। मौखिक परंपरा के ह्रासोन्मुख होने के भय से उस कर्मकांड विषय ज्ञान राशि को जो ग्रंथ का आकार देने का प्रयास हुआ, वही स्मृति साहित्य है। ज्यों ज्यों कर्मकांड का प्रचार बढ़ता गया, तद्विषयक अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। कर्मकांड के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ ही अनेक प्रकार के प्रश्न उठ खड़े हुए थे। क्या सभी वैदिक वाक्यों का संबंध याज्ञ से है? मंत्र एवं ब्राह्मण ग्रंथों में क्रियाओं के पूर्वापर भाव के संबंध में होने वाले विरोध प्राप्त स्थल में दोनों में कौन मान्य होगा? अनेक प्रमाण एक ही साथ पदार्थ विशेष को अनेक क्रियाओं में विनियुक्त कर रहे हो तो उनमें से कौन मान्य होगा और कौन अमान्य? क्या याग के अनुष्ठान के लिए किन्हीं अर्हताओं की आवश्यकता होती है? अथवा कोई भी व्यक्ति किसी भी याग का संपादन करके उसका फल प्राप्त कर सकता है? क्या यागानुष्ठान की आज्ञा या प्रेरणा वेद के स्वयं अपने शब्दों द्वारा मिलती है? यदि हाँ तो किस प्रकार, किस क्रिया का अनुष्ठान कौन व्यक्ति करेगा? कौन सी क्रिया मुख्य है और कौन उसकी अंग भूत? जिन यागों के विधान अपूर्ण है उनकी पूर्ति कैसे की जाएगी? इत्यादि अनेक ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर देना था, और वह भी तर्क संगत श्रुति संगत न्याय पर आधारित कारण निर्देश पूर्वक। याज्ञिकों को ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तर्क का सहारा लेना पड़ा। तर्कनिष्ठ सिद्धांतों का निर्माण हुआ और उन सिद्धांतों को कम से कम मौखिक परंपरा के रूप में संग्रहित किया गया। उक्त प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण करने वाले व्यक्तियों में कुछ ऐसे भी थे जो अनेक पीढ़ियों बाद भी नहीं भुलाए जा सके, जिनके सिद्धांत सदैव के लिए कर्मकांड विज्ञान के आधार बन गए। हो सकता है उन्होंने कुछ ग्रंथों की भी रचना की हो, किंतु उनके ग्रंथों की प्राप्ति आज हमें नहीं हो रही है। जैमिनीय पूर्व मीमांसक मीमांसा के उन गण्यमान दार्शनिकों में जिनके ग्रंथों की प्राप्ति आज हमें नहीं होती, अथ च जिनके द्वारा अन्विष्ट सिद्धांतों का प्रभाव मीमांसा दर्शन के मूलभूत प्राप्त ग्रंथ मीमांसा सूत्र पर महनीय रूप में है। मुख्य है बादरी, आत्रेय, लाबुकायन और ऐतिशायन आदि। इन मीमांसकों के ग्रंथ प्राप्त न होने के कारण हमारे पास यह जानने का साधन नहीं है कि प्राप्त जैमिनीय सूत्रों में कितना अंश जैमिनी का अपना मौलिक है और कितना पूर्ववर्ती आचार्यों से गृहित। जैमिनीय सूत्रों की प्रौढ़ता से भी ज्ञात होता है कि सूत्रों का बहुत अधिक अंश पूर्वाचार्यों की देन है। मीमांसा के मुख्य आचार्यों एवं कृतियों का संक्षिप्त विवरण। जैमिनीय एक मीमांसा सूत्र। मीमांसा दर्शन का प्राप्त मूलभूत ग्रंथ मीमांसा सूत्र है, इसे जैमिनीय सूत्र भी कहा जाता है। दर्शन जगत में सूत्र प्रणाली की उद्भावना का श्रेय जैमिनी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि दर्शन सूत्र साहित्य में सर्वप्रथम सूत्र रचना जैमिनीय सूत्र ही है, जिनका अनुकरण अन्य सूत्रकारों ने किया। डॉक्टर दास गुप्त का मत है कि मीमांसा सूत्रों का संबंध एक शाखा विशेष से प्रतीत होता है, अन्य शाखाओं के सूत्रों का लोप हो गया होगा। जैमिनिया ने अनेक आचार्यों का उल्लेख मीमांसा सूत्रों में किया है, किंतु उनकी कृतियां अप्राप्त हैं। अधिक संभव है उन कृतियों का संबंध अन्य शाखाओं से हो, परंतु डॉक्टर दासगुप्त का यह कथन इसके माने नहीं प्रतीत होता कि यदि शाखा भेद से मीमांसा का भेद होता और मीमांसा दर्शन में वर्णित वे आचार्य जिनकी कृतियां आज उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर दासगुप्त के कथनानुसार अन्य शाखा से संबद्ध मीमांसा के प्रवर्तक आचार्य होते तो भला उनकी चर्चा इस मीमांसा में, जो डॉक्टर दासगुप्त की दृष्टि में एकमात्र शाखा की मीमांसा रूप में मान्य है, कैसे होती, क्योंकि वे विभिन्न शाखाओं की विभिन्न मीमांसाएं मानते हैं। तदनुसार एक मीमांसागत एक शाखा संबद्ध मीमांसा के प्रवर्तक आचार्य का अन्य शाखा संबद्ध मीमांसा से कोई संबंध ही नहीं रह जाता है। अतः प्रकृति मीमांसा में होने वाले अन्य आचार्यों का उल्लेख ही यह बताता है कि उल्लिखित सभी आचार्य प्रकृति मीमांसा से ही संबद्ध हैं। अतः उन आचार्यों के उल्लेख के आधार पर मीमांसा को शाखा भेद से भिन्न नहीं सिद्ध किया जा सकता। संभव है कि डॉक्टर दासगुप्त को इस प्रकार लिखने की प्रेरणा इसे मिली हो। जैमिनी के नाम पर हमें सामवेद की जैमिनी शाखा में जैमिनी संहिता, जैमिनी ब्राह्मण, जैमिनी श्रौत सूत्र एवं जैमिनी गृह सूत्र भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार शाखा विशेष के साथ ही उनका घनिष्ठ संबंध प्रतीत होता है, परंतु मीमांसा दर्शन के अंदर सभी वेदों से संपृक्त विचार उपलब्ध होने के कारण भी प्रकृति मीमांसा को किसी एक वेद की एकमात्र शाखा की मीमांसा नहीं माना जा सकता। जैमिनी को स्वसूत्र रचना में प्रभूत सामग्री पूर्वाचार्यों से मिली होगी, वे मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक नहीं संकलन करता है। जैमिनी ने मीमांसा सूत्रों की रचना 12 अध्यायों में की है, इसलिए इसे द्वादश लक्षणी भी कहा जाता है। तृतीय, षष्ठ एवं दशम अध्यायों को छोड़कर अन्य सभी अध्यायों में से प्रत्येक में 8 पाद हैं। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ में 60 पाद प्राप्त होते हैं। सूत्रों की संख्या एक गणना के अनुसार 2652 है, दूसरी गणना के अनुसार 2742 मानी जाती है। सूत्रों का विभाजन विषय के दृष्टि से अधिकरणों में भी है। संपूर्ण अधिकरणों की संख्या 915 मानी जाती है। मीमांसा सूत्र के प्रत्येक अध्याय में जिन विषयों का विवेचन किया गया है उनका संक्षिप्त विवरण विभाग संख्या 2 की अर्थबोधनी में देखना चाहिए। 2. संकर्षण कांड। कतिपय विद्वान संकर्षण कांड को जैमिनी की रचना मानते हैं। संकर्षण कांड को देवता कांड भी कहा जाता है। संकर्षण कांड पूर्व मीमांसा का ग्रंथ है, इसमें उपासना का विवेचन प्राप्त होता है। उपासना का भी विधान वेद में प्राप्त होता है, इसलिए उपासना को ही सर्वाधिक महत्व देने वाले आचार्य रामानुज ने ब्रह्म सूत्र के अपने श्री भाष्य में मीमांसा दर्शन को षोडशाध्यायी कहा है, क्योंकि अध्याय चतुष्टयात्मक संकर्षण कांड को भी वे जैमिनीकृत एवं प्रकृत मीमांसा दर्शन के अंतर्गत मानते हैं। समय कीथ एवं डॉक्टर दासगुप्त के अनुसार मीमांसा सूत्रों की रचना का काल लगभग 200 वर्ष ईसा पूर्व है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार ये सूत्र ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी के पूर्व रचित नहीं माने जा सकते। जैमिनी का जीवन वृत्त। जैमिनी के जीवन वृत्त के विषय में प्रायः संपूर्ण संस्कृत साहित्य मौन है। बौद्ध एवं जैन साहित्य से भी जैमिनी के जीवन वृत्त पर प्रकाश नहीं पड़ता। महाभारत में जैमिनी का उल्लेख अवश्य है, किंतु दार्शनिक रूप में नहीं। पांचरात्र में एक हाथी द्वारा जैमिनी की मृत्यु का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त आश्वलायन एवं सांख्यायन गृह सूत्रों में भी जैमिनी का उल्लेख हुआ है, किंतु इस प्रकार के उल्लेखों द्वारा उनके व्यक्तित्व के विषय में हमारा ज्ञान नगण्य ही रहता है। मीमांसा सूत्र के प्राचीन व्याख्याता भरतमित्र, भवदास, हरि, उपवश और वृत्तिकार मीमांसा दर्शन के उन आचार्यों में हैं, जिनकी व्याख्याएं मीमांसा सूत्रों पर थी, किंतु वे सभी अप्राप्य हैं। उक्त आचार्यों में सर्वप्रथम वृत्तिकार हैं। शबर स्वामी ने मीमांसा सूत्र के भाष्य में एक उद्धरण प्रस्तुत किया है और उसे वृत्तिकार का बतलाया है। वृत्तिकार के उक्त उद्धरण में बौद्ध मत का खंडन मिलता है। कुमारिल भट्ट ने वृत्तिकार के उद्धरण की अन्य प्रकार से व्याख्या की है। कीथ वृत्तिकार के उद्धरण में बौद्धों के केवल शून्यवाद का ही खंडन मानते हैं, विज्ञानवाद का नहीं। अतएव वृत्तिकार का समय ईसा की चतुर्थ शताब्दी के बाद न मानने के पक्ष में है। अन्यथा यदि वृत्तिकार का समय उक्त काल के बाद होता तो वे विज्ञानवाद का खंडन अवश्य करते। मीमांसा सूत्र पर वृत्ति लिखने के कारण मीमांसक विशेष को वृत्तिकार कहा गया होगा। वृत्तिकार का वास्तविक नाम अज्ञात है। कुछ लोग भवदास को और कुछ लोग उपवर्ष को वृत्तिकार मानते हैं। जैकोबी के अनुसार बौधायन ने पूर्व एवं उत्तर दोनों मीमांसा दर्शनों पर वृत्ति लिखी थी। हेलो।